कितने वाकयात ऐसे अल्लाह के नबी की जिंदगी के, अगर आप कभी मौका हुआ तो सुना देंगे, और आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने सीरा की बुक्स में कि लोग नबी सल्लम की दुश्मनी के लिए आते थे और दोस्त बनकर जाते थे। कोई एक नाम लें, सबको पता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु गए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और अपने कुफर को कत्ल करके आ गए। नफरत और गुस्से वाला दिल लेकर गए थे ना, अल्लाह ने उनको कैसी नंगी तलवार बना दिया, इस्लाम खुल गया। हजरत उमर फारूक जब मुसलमान हुए तो फिर जुरत नहीं थी लोगों को अल्लाह के नबी को कुछ कहने की। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि जो बंदा गाड़ी में बैठा होता है और अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करता है ड्राइवर, तो वो लाइट उसको रास्ता दिखाती है ना। तसव्वुर में लाएं, रात का वक्त है, आप सफर कर रहे हैं, आप गाड़ी की लाइटें खोलते हैं, दो उसकी शेप्स होती हैं, एक क्लोज और एक जरा दूर दिखाती हैं। दूर दिखाए ना तो ड्राइवर को दूर तक दिखता है, ऐसे लगता है रोशनी है, लेकिन मसला होता है उसमें एक, दूसरी तरफ से आने वाले की आंखों में वो लाइट जाती है, आंखें चुंधियाती हैं। इसलिए अमूमन ड्राइवर्स को कहा जाता है कि लाइटें धीमी रखें, नीची रखें, फिर वो करीब की लाइट दिखती है ना। लिखिए एक बात, जो इस्लाम की या आज कह ले कुरान की गाड़ी के अंदर बैठा होता है, उसको कुरान का नूर रोशनी देता है, उसको रास्ते मिलते हैं। लेकिन जो बाहर से देख रहे होते हैं ना, उनकी आंखें चुंधियाई जाती हैं। आप दीन के लिए, कुरान के लिए बैठे किस डायरेक्शन में है, बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका इस बात से कि वो आपको रास्ता दिखा रही है या चुंधिया रही है। बस आप कुरान सीख रहे हैं, चलिए लफ्ज नूर है ना, तो कुरान में भी नूर है ना, तो नूरुल कुरान। आप इस वक्त नूरुल कुरान इंस्टीट्यूट में बैठे कुरान सीख रहे हैं, आपको कुरान की रोशनी दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी आसान हो रही है, अपने गुनाह समझ आ रहे हैं। जो आप बच्चियों को मैं देखती हूँ, इतना आप रोती हैं, मैं बगर में जाके सोचती हूँ हम भी इतना रोते थे इस उम्र में। हाँ, जिसको कुरान मिलता है वो रोता है, वो पिघलता है। दुनिया जो है ना, दिलों को सख्त कर देती है। जरा से बाहर बर्फ को रख दें, मेल्ट होगी, उसका पानी गिरेगा, या आपके छोटे छोटे दिलों पर कुरान का पानी पड़ता है जो आप रोती रहती हैं। और क्या चीज रुलाती है बंदे को, अपने गुनाह रुलाते हैं। मैं किधर थी, अगर ये कुरान मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं तो मर खप जाती, हाय मैं अपने फुलां गुनाह पे मर जाती, क्या होता। और आप में से वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को कुरान से जोड़े में खुशबख्त हैं, अल्लाह ने आपकी बेटियों की इज्जतें बचा ली, अल्लाह ने आपकी नस्लों को दागदार होने से बचा लिया। आपका मेरा वक्त जो आज से 20-30 साल पीछे था, वो फर्क था। आज इन बच्चों पे कितने बाहर हमले हैं, जरा जाकर देखिए। मैं तो कहती हूँ आप तो सिक्योरिटी जोन में बैठे हुए, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, मुस्लिम मुल्क, 97.7 पाकिस्तानी मुसलमान है। वेस्ट को जाकर रिलेट कर कर देखें तो वो तो बेचारे तरसते हैं कि अपने बच्चों को इधर लेके आ जाए, फिर भी आपके ऊपर कितने फितने हैं। मैं जब बच्चियों से कोई बात सुनूं या माशरे में देखती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ भी ऐसे होता है जी। कल किसी बच्ची ने कोई बात की तो उसमें पैंट का जिक्र आ गया, तो मैंने कहा बेटा इधर लड़कियों की पैंटें मिलती हैं, बच्चियों की पैंटें इधर होती हैं औरतों की, मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान में लड़कियां पैंटें पहनती हैं, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो आपके ऊपर जितने फितने हैं ना, आप कह लें ये सिर्फ 10% है। जिस दुनिया के लोग ख्वाब देखते हैं ना, जिधर जाने के लिए हम एड़ियां उछालते हैं, मैं कहती हूँ सारी दुनिया में से बेशतर हिस्सा अल्लाह ने दिखा दिए इस कुरान के लिए देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जाके वहां के मुआशरों की जो एक कसम पुरसी देखी है ना, अपनी एक एक औलाद तो खो ही दी अक्सर लोगों ने, एक एक बच्चा तो जरूरी बिगड़ा है, इल्ला माशाल्लाह। सिर्फ उनके नहीं बिगड़े जिन्होंने पहले दिन से नजरें रखी थी कि हम यहाँ डॉलर नहीं कमाने आए, हमारे अपने अपने बच्चे भी पालने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे वहां की इमाम भी। आज जहां माँ बाप ने आंखें बंद की अपने बच्चों की हिदायत से, वहां बच्चे बिगड़ गए, वो यहां भी बिगड़ेंगे, वो वहां भी बिगड़ेंगे। तो ये जो अंधेरे हैं ना दुनिया परस्ती के, अल्लाह ताला इसमें से निकालता है उनको, जिनका अल्लाह दोस्त होता है। अल्लाह आपका भी दोस्त है, पता है आपको, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू में आप भी आती हैं, क्योंकि अल्लाह आपको अंधेरों में से रोशनी में ला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए दुनिया में आने का मकसद वाजे हो रहा है। इसके बरक्स जिन्होंने अभी इसको नहीं चखा, वो इसको बुझाना चाहेंगे, परेशान होते हैं। दुनिया में इस्लाम के खिलाफ कितना कुछ उन्होंने किया, अल्लाह के नबी के रास्ते में कितनी रुकावटें खड़ी की, क्या हुआ, बंद हो गया इस्लाम, रुक गया, खत्म नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको जरूर हिदायत देनी है। तो बहरहाल स्टोरी पूरी करके आपको अगली आयतों पे लेके चलती, क्योंकि इधर अल्लाह ने इस आयत के एंड पे कहा उलाइका असहाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। जो बंदा तागूत का दोस्त बन जाएगा उसके नसीब में सिर्फ अंधेरे हैं, दुनिया में डिप्रेशन के, दुख के, तकलीफ के, फिर कब्र अंधेरी और आखिरत में जहन्नम की अंधेरी है। इन अंधेरों से रोशनी में आने का एक ही रास्ता है, वो कुरान का नूर है। बहरहाल जब मार्च का फर्स्ट वीक आया तो हमारे साथी जो बीच में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे प्यारे वॉलंटियर्स दिए हमें, सारी दुनिया ऐसे लगता है मुआविन है इसमें। तो उन्होंने हमें कहा कि आप 2 दिन के लिए बर्मिंगम आ जाएं, एक लेक्चर रख लेते हैं, एक तो पता लग जाएगा क्राउड कैसा है, लोग कैसे हैं, और प्लस ये कि जगह माइक सब चेक हो जाएगा। हमने कभी तो हम आए का नहीं, जो भी है खैर किस्सा मुख्तसर, वो मस्जिद वालों से बात की, उन्होंने कहा ये फलां दिन खाली है, 8 मार्च थी शायद, 8 मार्च ही है याद मुझे। खैर उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, इन्होंने एक दर्स रखा। हम ये सोच लेकर टिकट रिटर्न बुक साथ थी, 8 को गए, 11 की वापसी थी। ओस्लो से हम हीथरो गए लंदन, लंदन में भी स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। सीधा एयरपोर्ट से उन्होंने हमारा सामान रखवा कर, मेरे हाल 15-20 मिनट का फ्रेश अप देकर मैं स्कूल चली गई। आज भी याद है वहाँ हमने सूरत निसा की वो तफसीर की जो मेरी उस दिन ओस्लो क्लास में होनी थी, वीकडे था, बुध थी, तो मेरी वीकडेज में मैं अमूमन सफ़र नहीं करती क्योंकि वहाँ क्लास लेती हूँ एतबार। तो इन्होंने कहा आप वही क्लास लंदन के स्कूल में बैठ कर ले लें, तो वहाँ से नेट पे से साथी सुन लेंगे। 8 को गए, 11 की वापसी थी। वो दिन हमने ओस्लो से लंदन में गुजारना था, शाम वो लेक्चर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अतीउल्लाह और अती रसूल। और उस दिन वहाँ लंदन इंस्टीट्यूट को एक रेंट पे जगह ली थी, उसका भी वो पहला ही दिन था, तो बस एक से दूसरा काम हुआ। किस्सा मुझसे वहाँ से उठे, सारे एडमिन साथी थे, खाना खाया दोपहर का, और बर्मिंगम जाने के लिए गाड़ी रेडी थी, सामान डालकर बर्मिंग। अब आपको नहीं पता कितनी दूर है, तो लंदन से बर्मिंगम 2.5 घंटे की फासले पे एक और बड़ा शहर है जिसमें हमारा इस साल का दौरे कुरान प्लान था। खैर हमारे साथ साथी हमेशा ही साथ चलते हैं, वो साथ गए, तो हम रात को 8-9 बजे बर्मिंगम पहुंच गए। कुछ नहीं पता था कल का दिन क्या लाएगा, परसों क्या आएगा, अगला दिन क्या लाएगा। खैर हमारा पहला प्रोग्राम हुआ, 2 दिन रहना था ना, आपको बताया है, जुम्मा और हफ्ता, 2 दिन में इन्होंने 5 प्रोग्राम अरेंज कर लिए, सुबह इधर, दोपहर इधर, ये, और उसमें एक मेन प्रोग्राम जो उस मस्जिद में होना है वो भी होना है, वो पहले ही था। जब मैं लंदन से रात को पहुंचे हम वहाँ, तो अगले दिन वो प्रोग्राम था, बिल्कुल नॉर्मल प्रोग्राम हुआ, ऑन साइट हुआ, उन्होंने खोला, बहुत सारे लोग भी आए, यहाँ खोलेंगे ये हॉल, उन्होंने हमें सारी मस्जिद का टूर कराया, बिगेस्ट मस्जिद है यूके की, कह लें कि अल्लाह ने सऊदी अरब के थ्रू उस मस्जिद की बुनियाद, अब्दुल्ला बिन बास का नाम सुना होगा आपने, जो रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, नाबीना थे, उनके बारे में मारूफ है कि वो आए थे यूके, तो उन्होंने उस मस्जिद की बुनियाद रखी थी, और उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिद बनाए, अच्छी मारूफ मस्जिद, बेहतरीन मस्जिद, हम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यहाँ आपका दौरे कुरान होना है, अल्लाह जिधर ले दे हमें क्या, हमें तो अल्लाह की बात करनी है, जिधर भी कोई कह दे। सब सेटिंग हुई हमारी, ये हॉल छोटा है, ये बड़ा है, इधर सीढ़ियां हैं, इधर स्क्रीन लगाई, वहां जाके सारा प्लान कर लिया हमने। उसके बाद शाम का दर्स किसी और जगह था उसी शहर में, तो वहां गए। मुझे याद है कि उस दर्स के बाद मुझे कुछ खुसर फुसर समझ आई, आपस में लोग बातें करते हैं, मैंने कहा खैरियत है क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोरोना नाम की वो जो चीज सुन रहे थे, सुना था मैंने नाम उसका पहले, लेकिन ये पता था ये चाइना से कोई तकलीफ आई है, ये है वो है दिस एंड दैट। तो किस्सा मुख्तसर, यानी आपको सारी कहानी छोटी कर दूं, उन्होंने कहा कि बहुत फैल गया और अब लॉकडाउन होने लगा है, लॉकडाउन का अब यहाँ कर्फ्यू कह लें, अब लॉकडाउन तो इधर भी पता ही है सबको, पहली दफा नाम सुना था लॉकडाउन, क्वारंटाइन, और ये चीजों को हमारी डिक्शनरियों में थी जो हमने 2 साल में सुन ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक से दूसरी खबर, पता चला बॉर्डर बंद कर रहे हैं, मुल्कों में किसी को आने नहीं दे रहे, आने वालों को जाने नहीं दे रहे, और लॉकडाउन है कि जा नहीं सकते, एकदम हुआ था ये सब, समझ नहीं आई कि हमने कहा चलो कोई नहीं, हमने तो इतवार को जाना है, अगले दिन के भी 2 दर्स कर लिए, काम नहीं छोड़ा। जिंदगी का खुलासा आपको, अगर आप ट्रेनिंग सेशन लेने आए ना, आज आप में से कुछ लोग हमारे साथ बाहर से भी आए हुए ना, आज अगर सिर्फ एक बात लिख के अपने दिल पे ले जाएं, यहाँ आने का तोहफा, आंधी हो के तूफान हो, आप अपनी किसी जाती मजबूरी के नाम पे, आपको हालात सूट कर रहे हैं कि नहीं करते, यदि अगर आप मुझे टीचर कहते हैं ना, मैं अपने अंदर 100 खामियां और 1000 कमियां रखने के बावजूद सिर्फ एक चीज पे कह सकती हूँ कि क्यामत के दिन अल्लाह को ये कह सकती हूँ, या शायद अल्लाह उसी की बरकत दे रहा है, मैंने कभी काम नहीं छोड़ा, मैंने अपनी जाती जिंदगी के, मुझे याद है 2-3 साल पहले इधर ही पाकिस्तान में थी, मेरा अकलौता बहन का बेटा है, कि अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसका निकाह था लाहौर में, और हम फैसलाबाद दर्स के लिए जा रहे थे, इरादा तो कोई भी नहीं, दर्स करके आएंगे, निकाह तो शाम मगरिब पे, जब प्लान बना तो फैसलाबाद से लैया वालों में से कोई बोल उठा, प्लीज 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 जरूर आइए जरूर आइए, वो गोजरा था शायद, लैया नहीं गोजरा था, याद है भाई, गोजरा था, आप आ जाए, तरले मिनतों वाली बात, काके नहीं इतना होगा छोड़ देंगे, ये है वो है, नो नहीं कभी की, यानी 2 चीजें मुझे अपनी बहुत पसंद है, मैंने कभी नेकी के मौके को नो नहीं की, कभी नहीं की, इल्ला ये कि मैं ना कर सकूं, इसलिए कई दफा थोड़ा ओवरलैपिंग की वजह से ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती हैं, मैं इसको भी मानती हूँ। सिर्फ उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो वो जबरदस्ती फिट करते हैं कि कोशिशों में, फिर इधर से भी हम बुरे बने तो उधर से भी, लेकिन नो नहीं की कभी जो कर सके। हाँ मैंने कहा कह दें कुछ नहीं होता, 1 घंटा आने का, वहां 2 घंटे फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो सब करने में वो फैसलाबाद का दर्स भी हो गया, गोजरा का दर्स भी हो गया, लेकिन जब हम लाहौर पहुंचे तो वो निकाह वगैरह हो चुका था, फिर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। दुआएं तो उसको वहां बैठ के भी दे ही देनी थी, एक ही खाला एक ही भांजा, कोई बात नहीं ना, खाला को छोड़ो, इस वक्त देखो कितने लोगों को फायदा हुआ। जाती जिंदगी के मैंने जिंदगी का हर फैसला दीन को सामने रख के किया, इस्लाम को किससे फायदा होगा, दीन को किससे फायदा होगा, हमारे स्कूल को किससे फायदा होगा, ये इसकी बरकत है। लोग कहते हैं ये सब कैसे हो रहा है, आपको क्या पता ये सब कैसे करे, हमसे ज्यादा गरीब और मस्कीन और आजिज बंदा ही दुनिया में कोई ना मिले। अगर आप हमें हमारी निगाहों से देखें, यकीन ही नहीं आता ये इतनी बत्तियां जो जल रही हैं इसका बिल हमने देना है या कहाँ से देना है, हम तो बड़े छोटे लोग हैं। लेकिन अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह की रहमतें हम पे, आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन कभी अपनी जाती मजबूरी को मजबूरी नहीं बनाया। हम भी देखें घरों में घर रहते हैं, हम बेटियां हैं बीवी हैं, हमारे भी ससुराल हैं। आज सुबह मेरी अपनी सास से बात हुई है, हमारे सारे अपने प्यारे हैं, ये क्या होता है कि दीन का काम करने लगे रोबोट थोड़ी है। लेकिन उनको समझा लिया, बाकी वक्तों में उसकी कमी पूरी कर ली जाती है, लेकिन अपने दीन को हमेशा ऊपर रखा है। भाई बहन है नाराज नहीं होते, वो कभी नहीं नाराज होते, कह भी देंगे ना जब मैंने नहीं तुमसे बोलना तो मेरे बेटे की शादी में नहीं, देखना तुमने खुद ही तीसरे दिन बोल पड़ना है, फिर क्या है ये क्या है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, अपनी अपनी पड़ी हुई है, मुझे सूट नहीं करता, आज मैं बिजी हूं, और नॉर्वेजियन में कह दूं तो मुझे असर नहीं करता, उपथत हूं, बहुत मुश्किल है ना, ना मेरा बच्चा बीमार है, सिर्फ इतना सा नजला गिरता है हमारे बच्चे का तो हम सब छोड़ के बैठ जाते हैं, इसको ठंड ना लग दे, इसको वहां ना लग। याद रखिए आज के दौर का वली वो है जिसको लोगों की हिदायत की फिक्र है, जिसने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैंने खुद भी आग से बचना है और दूसरों को बचाना है, वरना ये नाजुक अंदाम लोगों के करने का काम ही नहीं, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी। अकेला बंदा भी काफी होता है इस रास्ते में, खड़ा तो हो, अकेले चले थे लोग मिलते गए कारवां बनता गया, ये कहानी है। वापस ले चलूं आपको, जब वहां ही लॉकडाउन शुरू हो गया, पाबंदी लग गई, ऑन साइट कुछ नहीं होगा, जब ये सब हो रहा है तो साथियों ने, और नॉर्वे से भी खबरें मिल रही, उधर भी लॉकडाउन, बर्मिंघम में लॉकडाउन, मैं क्या पता था ये कहानी कितनी लंबी चलेगी, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, चलो यहाँ आए हुए हैं तो अब जाना मुश्किल है या जाने में रुकावट है तो इधर करते हैं। वही दर्स बुक होने शुरू हो गए, मंडे का दर्स, सुबह का, घरों में छोटे छोटे जितनी कोई इजाजत थी, कितना कुछ सामान लेके बंदा जाता है जब 2 दिन के लिए जाता है। अच्छा ये मेरा माइक है, मुझे बड़ा प्यारा है, आप सामने बाद में इसका दीदार कर लीजिएगा, आपको वो क्या कहते हैं ज़ियारत करवा दूँ, ये जो माइक है मेरे सामने ये, उससे कुछ फिर आप और कहानी लंबी होगी, आपके सर अमेरिका गए तो वापसी पे ये इतना बड़ा इसका डब्बा है पिंजरा, इसका नाम भी है खास, बड़ा अच्छा माइक है, ये स्पेशल खरीद के लाए मेरे लिए गिफ्ट में कि ये दौरे कुरान में यूज़ करेंगे। अल्लाह जानता है कि ये नॉर्वे में था तो जब जा रही थी सामान तो पास था ही नहीं, और टिकट में अलाउंस था तो मैं ये माइक का बड़ा डब्बा इतना बड़ा था मैंने साथ रख लिया कि ये बर्मिंघम छोड़ आऊंगी अभी, और 19 को फिर जाना था जिसमें फिर 1.5 माह रहना था दौरे कुरान के लिए। अल्लाह को ये सारा पता था पहले से, सामान में जगह थी, जो मोटे कपड़े अच्छी चीजें थे यानी हमारे पास ऐसे गाउन, वो वहां के स्टाफ के लिए गिफ्ट के लिए ले लिए कि अब वहां 1.5 महीना रहना है तो उनको कुछ देना चाहिए, सामान भरा, बुक्स चाहिए थी लंदन वालों को, सामान अपने लिए ख्याल ही नहीं आया, बस हैंड कैरी में अपने 2-2 जोड़े रखे, ये चीजें लेकर हम चले गए, ये मेरे पास था। तो हम वहां बर्मिंघम से लेके, यानी आपको बताऊं हम 2 रातों के लिए गए थे, हम 9 माह के बाद वापस ऑस्लो गए, यानी 2 दिन के लिए गए थे, और जब गए थे तो आपको पता है मार्च था, सर्दी थी, अच्छी ठंड होती है, वो सर्दी गई फिर बीच में गर्मियां आई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हम नवंबर की 9 को वापस, फिर इस सारे 9 महीने में हम कुछ महीने बर्मिंघम रहे, फिर रात को जैसे कर्फ्यू में नहीं लोग निकलते, हल्की सी इजाजत मिली तो रातों रात हमारे एक और साथी हैं, अपने ही साथी हैं स्कूल के, उन्होंने कहा हम आपको इधर नहीं रहने देंगे, और फिर वो हमें ब्लैक वन ले गए, वो उससे भी 2-2.5 घंटे आगे है, फिर वहां से रमजान का पूरा दौरे कुरान इसी के साथ हुआ, लेकिन घर से हुआ, उसी मस्जिद के प्लेटफॉर्म से ही हुआ 2020 अगर, और उसका नाम भी फितनों के दौर में कुछ ऐसा ही था ना, मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं बातें कर रही आज, मुझे पता है कहानियों में मजा आता है सबको, लेकिन जब मैं अपनों में बैठती हूँ ना फिर मेरा दिल बहुत खुल जाता है, आज मुझे पता है कि आप सारे मेरे अपने हैं। अपनों से मुराद को छुपाने वाली बातें नहीं होती, लेकिन मौके के हिसाब से होता है ना। आप यकीन करें कि अल्लाह अपने कामों पे कादिर है, उसने ये काम करके दिखाया हमें। एक दिन हम फारिग नहीं रहे, चूंकि घर से जो करना था, फिर हमने उसमें 10 दिन का एक कोर्स किया था वबाई बीमारियों का, जादुल खैर उस साल का, सब लाइव हुए, दिन रात क्लासें शुरू हो गई। और फिर एंड पे रमजान के बाद फिर तकरीबन 5 माह करके करीब हम लंदन में रहे, और लंदन से फिर ओस्लो आना मुझे ऐसे ख्वाब लगता था कि कभी मैं ओस्लो भी जाऊंगी। उसमें लॉकडाउन देके 6-6 महीने, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी अपने हस्बैंड को घर में नमाज पढ़ते नहीं देखा। फर्ज सामने मस्जिद थी, जहां ब्लैकबन में रहे वो सामने मस्जिद थी, घर का पार्किंग लॉट में ही थी, बंद थी मस्जिद। जुम्मे घर में पढ़े, छोटी ईद घर में पढ़ी, बड़ी ईद घर में पढ़ी। मेरे लिए तो ये एक ऐसा नामुमकिन मामला था कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम हराजी थे। जो मुल्क वाले कहते हैं वही करते हैं। कभी किसी मुल्क का कानून नहीं तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी लीगल कोई काम नहीं किया आज तक, ना अपने मुल्क में ना किसी और मुल्क में। और फिर जब बीच में कमियां भी हुई बेशमी, अल्लाह ने उधर काम ले लिया, जिधर जिधर बैठे वहां वहां काम हो गए। और यकीन करें कि मुझे याद है 9 नवंबर थी, हल्की सी छूट मिली, फ्लाइटें चल रही, इसमें 3-4 टिकटें हमारी चेंज हुई, कैंसिल हुई, लेकिन शुक्र है कि वो कोरोना की आड़ में पेनल्टी नहीं होती थी टिकटें, लेकिन एंड टाइम पे पता चलता था फ्लाइट कैंसिल हो गई, नहीं हुआ, चलो हमें क्या, हम बैठे। और हमारा एक लम्हे के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं आई इस पूरे वक्त में, क्योंकि हर जगह अपने साथी हैं, काम भी है, साथी भी हैं, काम नहीं रुका। बड़े पैमाने पे नहीं हुआ तो छोटे पे, और नेट पे वो काम, आप हमारे फिगर्स पढ़ लीजिए, ये फैल ही गया इतना नूरुल कुरान, ये कोरोना में फैला। ये आप लोग कहते हैं आपके बाहर के स्टूडेंट ज्यादा ऑन साइड से, मैं कहती हूँ यस, अल्लाह की रहमतें, क्या करूं, अब कहूं कि ना सुने लोग घरों से उनको खैर मिली, उन तो साथियों ने आपकी तरह कोर्सेज घरों से किए, तो घर वालों के कानों में पड़ गया। और मैं आपसे भी कहती हूँ, आप में से किसी के दिल में, घर वालों के दिल में, वो पता नहीं नूरुल कुरान कौन है, इनका मसलक क्या, मजहब क्या, मैं कहती हूँ आप उनको सुनाइए, अल्लाह करे वो सुन लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कुछ छुटने लिए। आज तक किसी को ये नहीं कहा कि झगड़ा करना, हॉस्टल की बच्चियां गवाही देती हैं, कल रात को भी आपसे क्या बातें हो रही थी। हमेशा इस जुबान ने यही कहा है ना कि देखो इस लड़ाई नहीं करना, अच्छी बीवी बनना है, पहले खिदमत करें फिर खुद ही जीतेंगे। मैं तो कहती हूँ कि मुझसे कोई कह देना कि आपका टाइटल क्या आपको चाहिए, तो मैं कहती हूँ इनको अच्छी बेटियां, अच्छी बीवियां, अच्छी बहनें बनाना। हम औरतों का तो यही सारा काम है, यही कर लेंगे थोड़ा, कौन ये काम कर रहा है आप बताइए। आज सारी दुनिया तो पैसे कमाने पर लगी हुई है ना, खूबसूरतियों पर, जायदादों पर और कामों पर। और जिस दिन हम यकीन करें कि लंदन से ओस्लो आए हैं, मैं आज परस लाई कोई नहीं, या आपने 2 दिन में मेरे हाथ में देखा होगा, वो भी भुर रहा है सारा, अभी इतने से हाथ हले परस में के साथ आए थे, वो एयरलाइन जो थी उसमें हैंड कैरी की भी इजाजत नहीं थी, हमने कहा ये भी ले लो, हमारी जान, पासपोर्ट लेके भी हम आने को तैयार है, बिल्कुल अलिफ लिल्ला खाली हाथ है। वो कैरी ऑन जो ले गए, या वहां जाकर भी जो भी कोई चीज थी, वो सब वहीं छोड़कर सिर्फ हम अपनी, वो उस दिन याद आया था कि अल्लाह के नबी क्या बचा के आए हो, सिर्फ परस में हाथ में चीजें, क्योंकि परवाह भी नहीं थी, हमें जाने दो क्योंकि अब हमें जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जाने में भी कोई मुश्किल नहीं थी, ना रहने में थी, लेकिन बस एक बात थी कि अब चलते हैं, कई चीजें बंदे की रुकी होती हैं अपनी। तो बहरहाल आप मुझे बताइए कि सारी स्टोरी में से आपने क्या सीखा। अल्लाह के फैसलों को कबूल कीजिए, रदी तो बिल्लाही रब्बन, तस्लीम और रजा, अल्लाह ने आपके लिए जो जिंदगी में चूज कर लिया ना, उसी से राजी रहिए, अपने माँ बाप के ऊपर राजी रहिए। आप में से अगर कुछ बच्चियां, उनको लगता है कि हमारे अम्मी अब्बू सख्ती करते हैं, या कुछ तो मुंह खोल के भी कह देते हैं हमें, वी डोंट लाइक देम, आपको ये हक नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप वाकई कामयाब इंसान बनना चाहती हैं, बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, बोले रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बेहतरीन दुआ जो आप मांग सकती हैं ना अपने लिए, वो ये है। आप कहेंगे अपने लिए कैसे, ये तो माँ बाप के लिए। तो भी जब आप अपने लिए मांगेंगे और आपको कुछ मिलेगा तो खुशी किसको होगी, और अगर आप पे कोई तकलीफ आएगी तो किसको दुख होगा। तो आप ये दुआ पढ़ लें तो अल्लाह आपको आपके गमों से भी निकाल देगा और आपको भी खुशियाँ दे देगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खुशी का जरिया बने। नूरुल कुरान का पैगाम ये है, करेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी, किरदार के साथ और अखलाक के साथ लोगों के दिल जीतो। और मैं कहती हूँ कि इस काम में जो बरकत है ना, वो असल में इस बात की होती है कि जब आप अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करते हैं और आपके मनहज में कोई फिरका वारियत नहीं होती, कोई माल पैसा कमाना ही नहीं होता, आप कोई ऐसा काम करना ही नहीं पसंद करते कि जिससे कोई इशू हो, कोई शक हो, कोई डाउट हो, तो फिर अल्लाह हवाओं से भी मदद लेता है। अल्लाह ने नबियों की जिंदगी में जो काम करवाए आप सब जानते हैं, यानी ये पैगंबरों का मिशन है, मुझे तो ऐसे लगता है। कुरान को आम कीजिए। आज हमारा ये मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, सिर्फ कुछ खराबियां हैं, हमने इसको गंदा कर दिया। पोल्यूशन है, कहीं बाहर गंदगी की पोल्यूशन है तो कहीं हमारे झूठ की और रिश्वत की गंदगी है। दुआ करें कि मुस्लिहीन बने। अभी चंद दिन पहले एक कोर्स किया, उसमें सालेह और मुस्लिह का फर्क बताया, किसी ने सुना था? सालेहीन बनना चाहते हैं कि मुस्लिहीन, फर्क क्या होता है? सालेह वो होता है जो खुद नेक होता है, अपनी नमाज रोजे की फिक्र करता है। और सूरत निसा की आयत में मैं युति अल्लाह व रसूल फौलाई कमाल लजीन आनम्लाहू, पैरस से भी कोर्स हुआ, ये 4 दिन का मदारजुल ईमान था, उसमें पढ़ी है ये बातें। सालेहीन अपने फायदे के लिए जीते हैं, यानी अपनी नमाज की इसलाह, अपने रोजे की इसलाह, अपने अकायद की इसलाह, अपने मामलात को ठीक करना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुस्लिहीन वो होते हैं जो दूसरों की इसलाह की फिक्र करते हैं। तो हमने क्या बनना है? पहले सालेहीन बनना है, फिर मुस्लिहीन बनना है, दूसरों को भी फायदा देना है इंशाअल्लाह ताला। जब आप ये सब करेंगे तो अल्लाह आपके साथ क्या करेगा? सूरत माईदा की आयत 16 है, नंबर बस नोट करें, बाद में जाके मुसहफ में से ढूंढ के तर्जमे के साथ लिखिएगा। यहदी बिहिल्लाहु मन तबारिद्वानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर इलन नूरी बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसके जरिए से अल्लाह ताला इन लोगों को जो इसकी रजा के तालिब हैं सलामती के तरीके बताता है, और अपने इज़न से इनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ इनकी मदद करता है, यानी राह रास्त की तरफ इनको लेके चलता है। अपने इज़न से इनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। क्या पता चला? कि जब बंदा अल्लाह पे नजरें लगाता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामतियों के रास्ते देता है। याद रखिए, आज फितनों का दौर है, अब दिन ब दिन दुनिया में फितने ही आने हैं। सुबह का एक फितना, शाम का एक फितना, रात का एक फितना, फरमाया कि बारी दू फितने ऐसे होंगे जैसे आंधियां चलती हैं। एक शख्स सुबह को मुसलमान होगा तो रात को कुफर पे मरेगा, एक रात को कुफर पे है तो सुबह इस्लाम पे होगा। और आज आप ये देख रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है, हमारी जिंदगियों में बहुत सारी चीज़ें फैलती जा रही हैं, तो ऐसे फितनों में अल्लाह कहते हैं मेरी रजा की तलब रखो तो मैं तुम्हें सुबुल सलाम दूंगा, सलामतियों के रास्ते। दुआ करें अल्लाह आज अंधेरों में भटकने वाले लोगों को सुबुल सलाम दे दें। और इत्तेफाक देखिए कि ये हमारे एक कोर्स का नाम भी है, सेल्फ पेस्ड कोर्स है, जो किसी क्लास में नहीं आ सकते, जो किसी वर्क पे स्केड्यूल पे उनको सूट नहीं करता, तो वो सुबुल सलाम कोर्स ज्वाइन करते हैं। अपनी सेल्फ स्टडी के साथ हम उनको लेके चलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जिसको आप कह लें, यानी कुरान को आम करने की हर मुमकिन कोशिश। ये है नूरुल कुरान। वह युखरिजुहु मिनज़ुलुमाति इलन नूर, हजारों गवाहियां मौजूद हैं, हजारों गवाहियां मौजूद हैं उन लोगों की जिंदगियां जिनकी कुरान के नूर से जिंदगियां बदल गईं। मैं कहती हूँ अल्लाह ये गवाहियां क़यामत के दिन महफूज रखना। रोती हैं बच्चियां, डिप्रेशन में थी, मैं कहती हूँ आपको डिप्रेशन था? कहती जी मैं अपने आप को काटती थी, मैंने अपनी उंगलियों पर कट लगाए हुए थे, मैं दांत पीसती थी, मैंने खुदकुशी की कोशिश की, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सबीलुल जन्नत ज्वाइन कर लिया। आप में भी कोई ऐसा है जरूरत वाला जो कहना चाहे तो बता दे? आप में कौन कहता है, हाथ खड़ा करें, जिसको लगता है कि वाकई पीलुल जन्ना ज्वाइन करके मेरे अंधेरे दूर हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन सब की गवाहियों को कबूल कर ले। और फिर अंधेरों से रोशनियां, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल रोशन होता जाएगा, और फिर यहदी ही मिला सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह आपको ले जाएगा इंशाल्लाह। और याद रखिए, जो लफ्ज़ नूर है ना, ये रोशनी को कहते हैं। दो किस्म की होती है, लिख लें, लफ्ज़ नूर रोशनी है, ये दो किस्म की होती है, एक दुनियावी नूर और एक आखरत का नूर। यानी एक ये जो दुनिया में रोशनी हम देखते हैं, और एक आखरत के अंदर, यानी पुल सरात के अंधेरों में एक रोशनी चाहिए होगी। सूरत माईदा की आयत 15 में आता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। दुनिया में इस्लाम को भी नूर कहा गया है, और नूर कहते हैं वो फैलने वाली रोशनी जो चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है। लिख लें, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। अगली आयत नोट करें, सूरह तौबा 32, युरीदून युत्फि नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दें, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं है, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार गुजरे। लिख के रख लीजिए। हक के बारे में लोगों के दिल में शक आ सकता है, शुबा आ सकता है, उसके बारे में वहम आ सकते हैं, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, और इसकी बुनियाद पे कोई जो मुमकिन तरीका इख्तियार करे उसको रोकने का, रुकावटें डालने का, सेंक्शंस देने का, ऑब्लिगेशंस लगाने का, लेकिन हक फिर भी फैलता है। मिसाल किसकी है? मक्का में नबी सल्लम की। आपकी जान लेने तक का फैसला कर लिया। हिजरत की राहें याद कीजिए, चारों तरफ हिसार है आपके घर का, लेकिन अल्लाह कैसे नबी को ले गया, और आज भी इस्लाम का नाम मौजूद है और दुश्मन नहीं रहे। तो याद रखिए, इस कुरान के नूर को कोई बुझा नहीं सकता, और इसके रास्ते में आना भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह और बंदे का मामला बन जाता है, बंदे बंदों में से निकल जाते हैं। जिसने अल्लाह के रास्ते को पकड़ लिया, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसको छोड़ेगा ना, मान लीजिए कि फिर वो रुकावट डालने वाला उस बंदे से नहीं, अल्लाह से टक्कर लेता है। और फाज़नु बिहर्बे मिन अल्लाह वाली बात होती है। अल्लाह के नबी सल्लम की बात से हमें ये बात समझ आ गई। वो कहते हैं ना कि मुंह की फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, और दुआ करिए इस्लाम का ये नूर कभी ना बुझे। सवाल पैदा होता है कि आज मैं और आप यहाँ से क्या लेके उठे। आप सब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि आज हमें मिनज़ुलुमात इलन नूर के टॉपिक से अपने लिए क्या मिला है। तो लिखिए सूरत बकरा की आयत 143, ये थर्ड आयत है जो रेफरेंस आपको आज दे रही हूँ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासी वयकूनर्रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। ये है जी वो भूला हुआ सबक उम्मत का, जिसको याद दिलाना नूरुल कुरान की मेन पॉलिसी है। एक उम्मती बन के सोचो, उम्मते मुस्लिमा के एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते सोचो कि तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज आप अपने इर्द गिर्द पांच लोग, जिसमें एक डिफरेंट फॉर्म हो, एक स्टूडेंट कोई हो सकती है आपकी दोस्त, कोई एक स्कॉलर, कोई आलिम भी यानी इमाम साहब मस्जिद के, इसी तरह से आपकी नानी दादी, हर कैलिपर ऑफ लाइफ, या अपने घर की किसी मासी, पांच लोगों से एक सवाल कीजिएगा, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अच्छा, अगर वो समझ जाएंगे ना कि आप दीनदार हैं, कोई दीन के टोन में बात कर रही हैं, तो फिर ज्यादा ज्यादा वो कहेंगे जी नमाजें पढ़ना, वो जी रोजे रखना, ज़कात देना। कहते हैं ना लोग, सोमो सलात की पाबंद लड़की चाहिए। और अगर उनको ना शक हो ना कि आप पूछना क्या चाह रही हैं, तो हो सकता है वो कह दें जी हमारी जिंदगी का मकसद बच्चे पालना है और स्कूल में फर्स्ट आना है। स्टूडेंट कहेंगे हमारा तो काम यह है कि हम बिल्कुल ही अपने कॉलेज में टॉप करते, क्या आज हमारी यूथ का मकसद हयात ये नहीं बन गया वह टॉपर्स में से आना है। लेकिन ये आयत तो कुछ और ही कहती है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आपका मेरा काम क्या है कि हम उम्मत वसत होने के मुकाम को पहचाने। हम गोल्डन चेन हैं लोगों और अल्लाह के बीच में। पहले दौर में अंबिया कराम के जरिए पैगाम पहुंचता था। आपसे सहाबा ने सवाल किया कि आप चूंकि आखिरी नबी हैं, तो आपके बाद किससे पैगाम पहुंचेगा? तो आपने फरमाया तुम लोग, मेरी उम्मत। तो आपके मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। चौथी आयत नोट करें, आले इमरान 110, 110 सूरत आले इमरान। कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी वतन हउन अनिल मुनकर वतुमिनून बिल्लाह। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे अल्लाह ने, जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। हमने खैरा उम्मत इनका किरदार अदा करना। एक लम्हे के लिए सोचिए, आज मुसलमानों के अमूमी किरदार को देखकर लगता है कि कल हम गवाह बनेंगे? क्या अल्लाह कल चोरों की गवाही लेगा? क्या अल्लाह कल जानियों की गवाही लेगा? रिश्वतखोरों की गवाही लेगा? हमने इन डेप्थ स्टडी में सूरत शुरू की थी, जिसमें गालिबन सूरह मुनाफिकून, उसमें ये जुमले आए थे कि तुम दुनिया में अल्लाह के गवाह हो। आप और मैं कौन है? एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम। किसी मुल्क का सफीर दूसरे मुल्क में जाकर क्या करता है? यानी पाकिस्तान का सफीर जब सऊदीया में होगा या अमेरिका में होगा या अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में, तो वो क्या करता है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है ना, उनके रहने वाले लोग जो इधर हैं उनको सपोर्ट करता है। आप और मैं एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम हैं। सवाल कीजिए खुद से, क्या मेरे किरदार से खुशबू आती है इस्लाम की? क्या कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान? ये मिसाल मेरे ऊपर आती है? तो याद रखिए, मुसलमान उम्मते मुस्लिमा, जिसको उम्मते वसत भी कह सकते हैं, इनका फर्ज मनसबी बताया जा रहा है इस आयत में। उम्मत की इज्तमाई जिम्मेदारी बताई जा रही है, यानी दीन की रूह और हकीकत को दुनिया पर वाज़ह करना। ये मर्दो जन सब पे लाजिम है, औरतों और मर्दों दोनों पे काम है। हदूद और कयूद इसकी मुख्तलिफ है, दोनों को यकसा तौर पर मौके फराहम है। और सबसे बेस्ट ग्रोह जो ये काम कर सकता है वो यूथ है। नौजवान बेहतर तौर पर यह जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। समअप कर देती हूँ, कलमा गो मुसलमानों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स नाउ डेज। आप और मैं हैं, आपके अबू भी हैं, आपके भाई भी हैं, हमारे सारे मर्दों को और हमारी सारी औरतों को अगर ये पैगाम पहुंच जाए कि बीइंग अ मुस्लिम वी आर रिस्पॉन्सिबल, किस बात के? कि दीने हक की शहादत उन लोगों के सामने दें जो दीन की अजीम दौलत से महरूम है। आपके इर्द गिर्द तो मुसलमान है ना, लेकिन बेनमाजी हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे रहते हैं, आप उन तक पहुंचिए। और हम जैसे लोग जिनको अल्लाह ने बाहर की दुनिया के लिए चुना हुआ है अगर किसी नेकी के काम के लिए, तो हमारा फर्ज है कि उनको ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाहियां दें। और आपके इर्द गिर्द जितना शिर्क फैला हुआ है, मुसलमानों से शिर्क छुड़ाना आपका मेरा काम है। अपनी मासियों और अपने ड्राइवरों और अपने माली बाबाओं को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना आपका मेरा काम है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में लाना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम के उसवे के मुताबिक जिंदगियों को ढालना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब यह है कि इंसान इंसानों के गुलाम नहीं है, अल्लाह के गुलाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। ये पैगाम कितने खुशकिस्मत है हमें ऐसे मिल गया। हजरत बिलाल की तरह हमें पत्थरों पर नहीं लिटाए गए, कोड़े नहीं पड़े लोगों की तरह, फिर भी हम इस्लाम की कदर ना करें। आज कितने लोग हैं जो इस वक्त 5 वक्त में नमाज पढ़ते हैं? आपके सर मस्जिद के बगैर नमाज नहीं पढ़ते। जो साथ उनके रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो नमाज सफर की वजह से इधर उधर हो जाए तो उनको मस्जिद ढूंढने में, चाहे 6 मस्जिदों में हम पर 2-3 दिन पहले किसी जगह गए हुए थे तो वापस आए, गोल के मुताबिक यही था कि इशा की नमाज तक पहुंच जाएंगे। 10-15 मिनट रश में फंसे, कुछ रोड रास्ता भूल गए, आगे उगे हुए आए तो मतलब टाइम पूरा हो गया था। 4 मस्जिदों में गए आपके सर पूछ पूछ के इनसे कि शायद किसी मस्जिद में लेट इशा होती हो। हम तो हर मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, हमें तो नहीं कि ये किस मसलक की मस्जिद है, मस्जिद तो है ना। चलो पहले वक्त वाली में नहीं, दूसरी तीसरी चौथी के बाद उस मस्जिद में से किसी ने एक मस्जिद जगह होता है कि वो 8 बजे करते हैं इशा, ढूंढ ढांड के वहां पहुंचे तो नमाज पढ़ी। ये है विलायत। हम नमाज तो पढ़ते कोई नहीं, सच बोलना तो बड़ी छोटी बात है हमारे लिए। और याद रखिएगा, अल्लाह ने अपने नबी की जुबान पे कलमा जारी किया था, नोट करें, आयत 81 सूरत बनी इसराइल, वकुल जाल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। 8 साल का सब्र था मदीना में आने के बाद, और 13 साल की मार पीट ताजीब और टॉर्चर सहने के बाद जो मक्का में थे, जब मक्का फतह होता है, अल्लाह ने नबी सल्लम को फातह मक्का के तौर पर मक्का में भेजा और आपने अपने हाथ से मक्का के अंदर रखे हुए बुतों को हटाया, कबूतरी का बुत तोड़ा, उस वक्त आपकी जुबान पे ये आयत थी कि कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। दुआ करें हमारी भी जुबानों पे ये कलेमात जारी हों, हमारे इस मुल्क से शिर्क मिटे, बिदत मिटे, रिश्वत ख़त्म हो, झूठ ख़त्म हो जाए, धोखा ख़त्म हो जाए, हमारे घर पुरसकून घर बन जाएं, हमारी बेटियां बाइज्जत बेटियां बन जाएं, हमारे मर्द बाग़ैरत मर्द बन जाएं, और हमारे इस मुल्क में सच का बोलबाला हो, और हम भी कह सकें कि कुल जाल हक व जहक अल बातिल, और अल्लाह तो अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा। देखना यह है कि हम अपना कितना हिस्सा इसमें डालते हैं। आपने मैंने अपना अपना हिस्सा डालना है, इसलिए कि हम में से हर एक ने अल्लाह को जवाब देना है। मैं आपके लिए तो नहीं बैठी, आप मेरे लिए नहीं आए। हम सब एक दूसरे के साथ मामला करने वाले लोग हैं, हमें बेहतरीन तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से लेके चलना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। और इंसान इस जमीन पे किस नाम से आया गया था? पहला जुमला अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा था? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। तो ये जो खिलाफत अर्दी मिली थी ना, वो यही थी कि हमने दुनिया में लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है। आपके मेरे जिम्मे दो काम है, लिख लें। इंसान के जिम्मे दो जरूरी काम है। नंबर एक, उम्मत को इस अहम तरीन जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और इस्लाम की दावत को आम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत पे कहूंगी कि नूरुल कुरान बस ये दो ही काम कर रहा है। अल्लाह हमें मरते दम तक इसी पे रखे। नबी सल्लम ने पूरी जिंदगी दावत दीन के लिए सर्व कर दी। आप ऊंटों की आवाज सुनते तो फौरी दौड़े चले जाते कि कोई काफला आया है और उनको जाकर अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचा दूं। यही तड़प हमारी है। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई मर्द, कोई छोटा बड़ा रह ना जाए। लोग माल कमाते हैं, हमें नेकियां कमानी है। और नेकियां वो नहीं जो तस्बीह पे 500 बार कलमा पढ़ना, नहीं। देखिए, खुद तस्बीह पढ़ना बहुत आसान है, दूसरों को तस्बीह के काबिल कर देना ये बहुत मुश्किल काम है। ये है दावत इल्लाह का काम, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। सवाल लिखिए कि जब हम चाहते हैं कि दुनिया पूरी में इत्माम नूरे तौहीद हो जाए तो तरीका क्या होगा? हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीन फैले, लोग इस्लाम पे आए, तो उसके लिए क्या चाहिए? नंबर एक, खलूस। इखलास के बगैर चीजें पता कैसी होती हैं? जैसे आप एक पार्सल भेज दें और एड्रेस ना लिखें, हो जाएगा ना आपने अपना भेजा एड्रेस ना अगले का लिखा, तो डाक खाने वाले बेचारे किधर लेके जाएं? इखलास के बगैर नेकियां ऐसे ही होती हैं, एड्रेस गलत लिख या गलत एड्रेस लिख दें। हम अल्लाह की बजाय लोगों के लिए करते हैं तो फिर लोगों को पहुंचती हैं, अल्लाह को नहीं पहुंचती। दूसरी चीज, मसनून तरीके की पैरवी। ये दावत इल्लाह का काम करते हुए हमने तरीका नहीं छोड़ना अल्लाह के नबी का। अगर हम औरतें हैं तो हमारी पाबंदी है, हमारी कैद है, हम उन्हीं तरीकों पर चलेंगे इंशाल्लाह। तीसरी बात, जज्बा ईमानी, और वो यूथ में बहुत होता है और वो प्रोड्यूस होता है कुरान पढ़कर, जो मैं आप लोगों में देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो टिक के बैठ के अपने माहौल के साथ सबीरुल जन्ना क्लासेस में कर रहे हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह ईमान बढ़ेगा वक्त के साथ और भी आएगा। अभी तो आपने बहुत सारी सूरतें पढ़ी नहीं है जिसमें से आपको ईमान के फल मिलने हैं। चौथी चीज, हौसला। ये बड़े हौसलों का काम है। सूरत हमीम सजदा की आयतें याद आ गई कि ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, वो यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी। ये अल्लाह की तरफ बुलाना, इसके रास्ते में इतनी रुकावटें, रात जाते बैर, और टेम्पटेशन कितनी है। लोग आपको बाजारों में बुलाएंगे, लोग आपको फिल्मों में बुलाएंगे, लोग मेहंदियों पे बुलाएंगे, शादियों में बुलाएंगे, और आप कहते नहीं मैंने तो कुछ और करना है। तो हौसला बहुत ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ जो इसका फ्यूल है, उम्मत की तकलीफ का एहसास। फ़लअल्लक़ बाख़िउ नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफ़ा। ए नबी, आप तो इनका गम खा खा कर घुल जाएंगे। आपने तो अपनी जान को रोग लगा लिया कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। ये बखा चाहिए आपको मुझे। मैं भी नहीं कुछ कर सकती अगर मेरे अंदर इंसानियत से प्यार ना हो। पैसों के लिए जो करते हैं ना, वो छोड़ देते हैं, और कोई पैसे देगा उधर चले जाएंगे। इधर पैसे का तो कोई खेल ही नहीं है। अपनी चीजें बेच बेच कर हम अपने मामलात को पूरा कर लेते हैं। कभी कोई पूछता है ये सब कैसे हो रहा है, खास तौर पे आपके शहर में बड़ी तेजी से काम हो रहा है। कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कहती हूँ आकर तो देखिए जरा आप कैसे ये समोसे बना बना कर बेचते हैं, फिर वही बेच के कैंटीन में पैसे आते हैं। अल्लाह का शुक्र है पूरे महीने का बिजली का बिल उससे निकल जाता है। ये औरतों ने काम किया है अल्लाह के हुक्म से, ये आज भी वैसे ही हो रहा है। अपने पे नजर है, दूसरों पे क्या करना है आपने? कौन देगा आपको, है किसी के पास क्या? सबसे बड़ी कुव्वत तालिब इल्म है, स्टूडेंट। जिनको समझ आ जाता है अपनी जिंदगी का मकसद, वो दूसरों को नहीं कहते, वो कहते पहले मैंने शेयर्स खरीदने हैं। तो याद रखिए, अल्लाहु अलीयुल्लज़ीना आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। और किसी ने कहा था ना कि वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है। अभी दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। अभी तो आपके इस पूरे मुल्क से शिर्क नहीं गया, दुनिया में तो कितना है। कैसे जी सकते हैं हम शिर्क की गंदगियों में? हजरत इब्राहिम ने तो हाथों से बुत तोड़े, हम तो अभी सिर्फ जुबान से भी दावत के मोड़ से आगे नहीं निकले। तो सिर्फ अपने लिए ही जिंदा नहीं रहना, टिप्स लिखिए आज के सबक के खुलासे, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई कर ली, बीए किया, मास्टर्स किया और नौकरी लग गई और सारी जिंदगी थोड़ी तरक्की करते करते 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तनख्वाह हो गई महीने की, और फिर 40s 50s 60s के बाद पेंशन मिली और मर गए। क्या ये आम लोगों का लाइफ स्पैन नहीं है? और पेंशन इस लाइफ तो मैं कहती हूँ मौत की ट्रेन का इंतजार करने का नाम है। मोमिन कभी रिटायर्ड नहीं होता, उसके पास तो हर रोज नई एनर्जी होती है। और एक और बात लिखी है कि ये काम मुश्किल कोई नहीं है। आपको अगर मेरे साथ अपने इर्द गिर्द साथियों को देखने का इत्तेफाक हुआ, आपको कभी कोई रोता हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा हंसते बोलते ही दिखते हैं। इतनी एनर्जी मिलती है, बाकी कामों में आप थकते हैं, इसमें आप रिलैक्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये लंबा काम है, तवील काम है, मुश्किल नहीं लेकिन वक्त तलब है। आपको कुछ ना कुछ अपनी दुनिया की चीजों को कट डाउन करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ आप 2 लाख की भी पे वाली जॉब कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं इसलिए कि मेरी स्टडीज पूरी हो जाए, सुकून नहीं मिलेगा? कई लोगों को मैंने स्लीपिंग पिल्स खाते देखा है, लाखों कमाते हैं। इधर अभी 2 मिनट में सोकर देखें जरा, ऐसी गनूदगी आएगी आप फ्रेश अप हो जाएंगे। रोजमर्रा के काम भी साथ करने हैं, आपने अपने घर नहीं छोड़ने हैं, घर का काम नहीं छोड़ना, इसको एस्केपिज्म नहीं बनाना। मर्दों के लिए भी ये पैगाम है, और अगर वाकई आप किसी मजबूरी में कहीं निकलती हैं तो जिस जिस जगह आप काम करती हैं, जो आपकी वर्क प्लेस है, आप डॉक्टर हैं, आप किसी जगह अगर कोई और काम करती हैं, तो अपने अखलाक और अपने किरदार और अपने अमल के जरिए लोगों को एक तस्वीर बनकर दिखाएं, बिल्डर बने। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अखलाकी और नफसियाती बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अभी आप जैसी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां बाहर बैठी हैं, अपने अखलाक से उनको लाइए अंदर, गुस्से में नहीं, डांट में नहीं, तानों में नहीं। कभी आप भी वैसे ही थे। कॉलेजेस भरे पड़े हैं, स्कूल भरे पड़े हैं, आपकी कजन है, लाइए उनको। वो किसी ने कहा था ना कि हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। अब इस शेर का क्या मतलब, उसको तो छोड़ दें। ये पता है कि अगर हम जितने मुसलमान हैं इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन अच्छे मुसलमान बन जाए तो दुनिया भी इस्लाम में आएगी। आज आलात और हथियार हैं, ईमानी कुव्वत की कमी है। तो सारी बात का एंड अप यही है कि अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा काम दिया है, इंशाल्लाह हमने उसको इस्तेमाल करना है नेमतों को। और सबसे बड़ी कुव्वत जो इस रस्ते में दरकार होती है वो ईमान है, और ईमान मिलता है कुरान से। इल्म और हुनर से माला मार, मगर इल्म को अमल में बदलने की ज़रूरत है। आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ एहसास कम है। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को जब खैबर के लिए भेजा तो आपने फरमाया कि तुम उनको पहले इस्लाम की दावत देना और जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी है उससे उनको खबरदार करो। और फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे जरिए अगर एक शख्स को हिदायत मिल जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, यानी सुर्ख गाड़ियों से जो कि बहुत ब्रांडेड गाड़ियाँ हों। तो इंशाल्लाह ताला हमने इकामते दीन के काम को करने के लिए साबिकून अल अव्वलून के नक्शे कदम पे चलना है, इसी रास्ते का इंतखाब करना होगा जिसका खलीलुल्लाह से सैफुल्लाह तक ने सफ़र किया, और इसी दर्जे का दीन नाफिज करना होगा जैसा उन्होंने किया, पहले अपने इस 5 से 6 फुट के वजूद पर और फिर अपने इर्द गिर्द पर। और बाकी रह गई कि अल्लाह ताला की जो मशीयत है, जो अल्लाह चाहता है, उसके खिलाफ कोई कोशिश करना ऐसा ही है जैसे कोई अहमक नूरे आफ्ताब को मुंह से फूक मारकर बुझा दे। यानी सूरज फूकों से नहीं बुझता तो इस्लाम भी नहीं बुझेगा। अगर वाकई हम अल्लाह के नाम पर निकलते हैं तो इस्तकामत के साथ खड़े रहेंगे और अल्लाह के इस नूर को फैलाने की कोशिश करते रहेंगे, और अल्लाह हमारी आपकी कोशिशों का मुहताज नहीं है। उसने तो अबाबीलों से अपने घर की हिफाजत करा ली, एक परिंदे से मलका सबा को पैगाम पहुँचवा दिया। आज अगर अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के सर पे ताज रखा है, उनको इज्जत बख्शी है, तो हम सबको इस पे खुश होना है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है कि इतमाम नूरे तौहीद में हमने कहीं कमी तो नहीं की, और हमारी जाती जिंदगी में जो गम आ रहे हैं ना, ये बीमारियां परेशानियां, कहीं ये उसी का पेश खेमा तो नहीं? पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत ही पीछे नहीं देखते थे, आगे चलिए, अच्छी अच्छी हिकमत अमलियां अपनाइए। आपने सहाबा को तलकीन दी और आप और मैं भी इंशाल्लाह अपने लिए यही कहेंगे, और आखिर में अल्लामा इकबाल का वो शेर जो आज बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, मेरे साथ ही पढ़िए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह हमारी नस्लों को अपने लिए चुन ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।